الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا وصبر جميل، عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. وتولى عنهم وقال يا أسف على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا ستر الله. تو اس کلاس میں ہم سورہ یوسف کی تفسیر پڑھتے ہیں معرفت القرآن جلد نمبر 5 سے، اور جو آیات ابھی تلاوت کی گئی 86 سے 87، یہ پیج نمبر 127 کے اوپر ہم نے ان کے خلاصہ تفسیر کو پڑھنا ہے. ترجمہ پچھلی کلاس میں پڑھ کے مکمل کر دیا تھا. تو خلاصہ تفسیر جو کہ حضرت مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی بیان القرآن سے حضرت نے یہاں پر نقل کیا ہے. تو اس میں فرماتے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام کے معاملے میں ان سب سے، یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کے معاملے میں ان سب سے غیر مطمئن ہو چکے تھے، تو سابق پر قیاس کر کے فرمانے لگے. ٹھیک ہے، تو قالا کا جو ہے نا وہ یہ حضرت نے تفسیر لکھی ہے. قالا اس نے کہا، کس نے کہا یہ تفسیر سے پتا چلے گا کہ کس نے کہا. تو وہ تفسیر جو ہے مفسرین بیان کرتے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام جب یوسف علیہ السلام کے معاملے میں غیر مطمئن ہو چکے اپنے باقی بیٹوں سے، تو پھر سابق پر قیاس، یعنی ماضی میں جو واقعات ہو چکے تھے ان سے لوجیکلی کنکلیوڈ کر کے فرمانے لگے. کالا، یہ سب کالا کی تفسیر تھی کہ بنیامین چوری میں ماخوذ نہیں ہوا. تم جو مجھے کہہ رہے ہو نا کہ بنیامین نے چوری کری اور جو ہے وہ آپ پتہ کر لیجئے کسی سے بھی، ٹھیک ہے، تو نہیں، بنیامین نے چوری نہیں کری. بل سولت لکم انفسکم امرا، بلکہ تمہارے جی نے ایک بات بنا لی ہے. سولت لکم، سولا کا پچھلی دفعہ ترجمہ کرتے ہوئے بتایا تھا کہ کسی برے کام کی طرف جو ہے نا وہ نفس کا یا کسی کا ابھارنا، ٹھیک ہے، انٹائس کرنا، سیڈیوس کرنا، یا برے چیز کی طرف ابھارنا، یہ یعنی برے معنوں میں استعمال ہوتا ہے. سب والا یو سب ویلو تصویلن، ٹھیک ہے، صرف جاننے والے یہ ابواب وغیرہ جانتے ہیں. تو کہنے لگے کہ بنیامین تو چوری میں ماخوذ نہیں ہوا، یعنی نہیں پکڑا گیا، چوری میں نہیں پکڑا گیا، بلکہ تم نے اپنے دل سے ایک بات بنا لی ہے، ٹھیک ہے. سو خیر مثل ثابت، میں صبر ہی کروں گا، ٹھیک ہے نا. پہلے بھی میں نے صبر کیا تھا، پہلے بھی تم لوگوں نے اسی طریقے سے ایک بات گھڑ لی تھی، ٹھیک ہے، تمہارے نفسوں نے، تمہاری جیوں نے ایک بات گھڑ لی تھی، اور میں نے پہلے بھی صبر کیا تھا، اب بھی میں پہلے ہی کی طرح صبر کروں گا. فصبر جمیل، جس میں شکایت کا نام بھی نہیں ہوگا. یعنی صبر جمیل کیا ہوتا ہے کہ جس میں کہ جس سے دکھ پہنچا ہے، تکلیف پہنچی ہے، اس سے شکایت نہیں ہوتی، ٹھیک ہے. مجھ کو اللہ سے امید ہے کہ ان سب کو اصل اللہ، ٹھیک ہے، اصل اللہ، شاید کہ اللہ تعالیٰ نہیں آئے. شاید یہاں پہ اصا جو ہے وہ امید کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ نہیں آئے. اَن یَأْتِيَنِ بِهِمْ جَمِيعًا، اللہ تعالیٰ نے ان سب کو میرے پاس واپس. انہو هو العلیم الحکیم، بے شک وہ سب علم رکھنے والا بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے، ٹھیک ہے. تو انہوں نے فرمایا अल्लाह से उम्मीद है कि इन सबको यानी यूसुफ अलैहिस्सलाम और बुनियामीन और जो बड़ा भाई अब मिस्र में रह गया है उन तीनों को मुझ तक पहुंचा देगा, क्योंकि वो यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात हकीकत हाल से खूब वाकिफ है, इसलिए उसको सबकी खबर है कि कहाँ कहाँ और किस किस हाल में हैं, और वो बड़ी हिकमत वाला है। यानी जब मिलाना चाहेगा तो हजारों असबाब व तदाबीर दुरुस्त कर देगा, ठीक है ना, जब नहीं मिलाना चाहेगा तो उसके लिए भी तदाबीर जो है वो अल्लाह ताला बड़ी आसानी से अपनी हिकमत से कर लेगा। बराबर वाला इंसान भी नहीं मिल सकता, ठीक है ना। अब मिसाल के तौर पर खुदा ना खास्ता किसी के साथ कोई ऐसा हादसा पेश आ जाए, ठीक है, कि उसके घर के अंदर ही उसके घर का कोई फर्द जो है ना वो किसी स्टोर रूम के अंदर या किसी जो है वो ऐसी जगह पे जहाँ पे आम जाना वाना नहीं होता किसी का, तो वहां पर जो है ना वो कोई हादसा पेश आ जाए, किसी की सांस बंद हो जाए, किसी को कार्डियक अरेस्ट हो जाए, ठीक है ना, और वो घर के कमरे के अंदर मरा पड़ा हुआ हो या बेहोश पड़ा हुआ हो और किसी को पता ही नहीं है, अब लोग ढूंढियाई मचाए हुए हैं और जो है वो लोगों से पूछ रहे हैं, फोन कर रहे हैं, इधर देख रहे हैं, उधर देख रहे हैं, पूरी दुनिया में तलाश उसकी हो रही है, लेकिन बिल्कुल घर के अंदर किसी जगह पे जो है वो बंदा पड़ा हुआ है, हमें नहीं पता, और किसी का ध्यान भी नहीं जा रहा कि भाई उधर भी जा करके चेक कर लो कि हो सकता है घर के ही किसी काल कोठरी के अंदर वो बंदा जो है वो किसी हादसे का शिकार हो गया और वहां पर पड़ा हो। यानी इतना करीब भी इंसान हो लेकिन अगर अल्लाह ना चाहे तो हमें नहीं मिल सकता, ठीक है। तो हमारी ये हकीकत है, यानी हमारी लाइल्मी की और हमारी पेप्सी की, राइट, पेप्सी की हकीकत तो पता हो गई ना सबको इंशाल्लाह। तो पेप्सी की क्या हकीकत है? बेबसी। पेप्सी की हकीकत क्या है? बेबसी। जो पेप्सी के एडिक्ट हो जाते हैं ना तो वो भी बेबस हो जाते हैं, अब वो हर वक्त एक कैन के बाद दूसरा कैन, दूसरे कैन के बाद तीसरा कैन, ये हमें एक तरह के एडिक्ट साहब नहीं एक्चुअली ये बात बताई, ठीक है ना, जो कि पता नहीं कितने कैन जो है ना वो एक दिन में पेप्सी के पी लेते थे। उन्होंने बताया कि हजरत जी इसको बेबसी कहते हैं, ठीक है, फिर हजरत जी ने उनकी पाबंदी लगाई कि नहीं आप जो है वो 3 कैन से ज्यादा नहीं पियेंगे, ये बहुत पुरानी बात है, ठीक है। फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता शायद उन्होंने पेप्सी बिलाखिर छोड़ दी, लेकिन वो बेबसी बन गई थी उनकी। तो हमारी बेबसी का ये आलम है कि हम कुछ नहीं कर सकते, हम कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो अल्लाह ताला तदाबीर जो है वो दुरुस्त कर देता है जब कोई काम करवाना चाहता है, और जब कोई काम नहीं करवाना चाहता तो उस तदाबीर जो है वो खराब कर देता है, वो काम नहीं हो करके देता। काश कि हम अपनी बेबसी को पहचान जाएं। हमारी कामयाबी पता है किस काम के अंदर है, किस बात के अंदर है? हमारी कामयाबी ये नहीं है कि हम बड़े बड़े काम कर जाएं, मुसीबत ये है कि शैतान ने हमें ये बावर करा दिया है, ये हमें जो है ना वो कन्विंस कर दिया है शैतान ने कि तुम जितने बड़े काम करोगे ना, जितने 30 मार खान बनोगे और जितने जो है वो बड़े बड़े फीट्स जो है वो अंजाम दोगे, और जो है ना वो कोई यानी जिस फील्ड के अंदर भी है ना कोई इन्वेंशन करोगे या जो है वो कोई कंस्ट्रक्शन करोगे स्काई स्क्रेपर टाइप की, या कोई जो है ना वो तुम कोई पहाड़ सर कर लोगे और तुम जो है ना कोई समुंदर जो है वो तैर करके उबूर कर लोगे और तुम फलाना कर लो, तो तुम बड़े आदमी बन जाओगे, तुम्हारी कामयाबी हो जाएगी। ये हकीकत नहीं है, ये धोखा है शैतान का, जिसके अंदर अनफॉर्चुनेटली तकरीबन सारी इंसानियत, तकरीबन सारी इंसानियत इस धोखे का शिकार है, ठीक है। लेकिन असल कामयाब कौन लोग होते हैं, असल कामयाब कौन लोग होते हैं? ये वो लोग नहीं होते जो कि इस किस्म के कारनामे अंजाम देते हैं, बल्कि असल कामयाब लोग वो होते हैं जो कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की अजमत को पहचान जाते हैं और अपनी बेबसी को पहचान जाते हैं। ये कामयाबी की तारीफ है जो कि अल्लाह ताला ने अपने हबीब अलैहिस्सलाम के वास्ते से हमें सिखाई, ये कामयाबी की तारीफ है। लेकिन हम नबी के वास के रास्ते से जो है कामयाबी की तारीफ नहीं जानना चाहते, हम शैतान के रास्ते से कामयाबी की तारीफ जानना चाहते हैं। तो जाहिर है जब हम शैतान को अडॉप्ट करेंगे, शैतान को प्रेफर करेंगे नबी अलैहिस्सलाम के ऊपर, तो यही होगा ना, फिर और क्या होगा? फिर उसके बाद धोखा, दजल, फरेब, तो हम उस फरेब के अंदर मुब्तला है, एक से एक कारनामे अंजाम देने की कोशिश में लगे रहते हैं हर वक्त, ठीक है, और दूसरों को भी हम जांचते हैं किस बुनियाद पर? कारनामों की बुनियाद पर, कारनामों की बुनियाद पर जो है ना वो हम सबको जांचते हैं, चाहे दुनियादार हो चाहे दीनदार हो, हमारे नजदीक कामयाब दुनियादार कौन है जिसने कारनामे अंजाम दिए हो, हमारे नजदीक कामयाब दीनदार कौन है जिसने कारनामे अंजाम दिए। ऐसा है कि नहीं है, कोई इसे इख्तलाफ कर सकता है कि नहीं ऐसा नहीं है? ठीक है, अगर आपके नहीं होंगी तो फिर आप माशाल्लाह उन चंद लोगों में से होंगे जिनकी तारीफ ऐसी नहीं है, लेकिन अदरवाइज तो इंसानियत की यही तारीफ है ना। हम दीनदारों में भी कारनामे देखते हैं, हम दीनदारों में भी कारनामे देखते हैं, और जब कारनामे कहीं पे नजर आ जाते हैं ना, फिर उसको जो है वो बढ़ा चढ़ा करके, खूब जो है ना वो मिर्च मसाला लगा करके हम उसको जो है वो बढ़ा, वो शेख साहब ने ये भी किया, शेख साहब ने वो भी किया, और जो है वो आलिम साहब ने ये भी किया, और आलिम साहब ने वो भी किया, और फलाने साहब ने ये भी किया, और फलाने साहब ने वो भी किया। ठीक है ना, दुनियादारों की बात नहीं, यहाँ पे तो तफसीर की क्लास होगी ना, सारे दीनदार बैठे हुए हैं इंशाल्लाह, तो हम दीनदारों की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो दीनदारों में हमारे पास यही है क्राइटेरिया, यही है। ठीक है, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत से ये बात साबित नहीं होती है। ठीक है ना, जब सबसे बड़ा कारनामा नबी अलैहिस्सलाम को दुनियावी एतबार से जो बज़ाहिर नजर आता है, सबसे बड़ा कारनामा नबी अलैहिस्सलाम को मिल गया, सबसे बड़ी फतह फतह मुबीन मिल गई, तो नबी अलैहिस्सलाम जितना आजिजी और इनके सारी उस दिन नबी अलैहिस्सलाम ने डिस्प्ले करी है, उतनी शायद किसी और दिन डिस्प्ले नहीं करी। राइट, और क्या फरमाया कि अल्हम्दुलिल्लाह वहदा, तमाम की तारीफ उस एक जात के लिए, तमाम की तमाम तारीफ सिर्फ उस एक जात के लिए है। राइट, नसर अब्दा, जिसने कि अपने बंदे की मदद फरमाई, वह अंजजा वादा, जिसने अपने वादे को पूरा फरमाया, वह हजमल अहजाबु वहदा, और जिसने अकेले सारे के सारे लश्करों को जो है वो मार भगाया, अकेली जात अल्लाह रब्बुल इज्जत की, सारा कारनामा उसका। क्या कर रहे हैं, अपनी नफी कर रहे हैं, अपनी नफी कर रहे हैं, अपने अपने आप को एनाइहिलेट कर रहे हैं, बिल्कुल खत्म, मैंने कुछ नहीं किया, सब कुछ अल्लाह ने किया। तो वो क्या कर रहे हैं, वो खाली जो है वो अपने आप को खुश करने के लिए इस किस्म का काम कर रहे थे? नहीं, वो हमें सिखा रहे थे, वो हमें सिखा रहे थे, वो हमें अल्लाह से जोड़ रहे थे कि देखो अल्लाह से जोड़ो, ठीक है ना, बंदों से मत जोड़ो। बंदों से जुड़ना भी है तो वो खाली सीखने के लिए जुड़ना है कि अल्लाह से कैसे जुड़ना है, ये सीखने के लिए अल्लाह ताला ने अपने बंदे बंदे भेजे हैं। ये नहीं कि बंदे की दुम में चिपक जाओ जा करके, इत्तेबा करने का मतलब ये नहीं होता कि उसकी दुम में चिपक जाओ और कहो कि नहीं मुझे अल्लाह से नहीं जुड़ना है, मुझे अल्लाह से नहीं जुड़ना है, मुझे तुमसे ही चिपक करके रहना है, हत्ता कि तुम्हें भी मैं नहीं चलने दूंगा आगे, ऐसा चिपकूंगा जाके कि तुम्हारे साथ कि मैं तुम्हें भी आगे नहीं चलने दूंगा। हमारा तो ये हाल है, जिनसे हमें सीखना था ना, हम उल्टा उनके रास्ते की रुकावटें बन जाते हैं, उल्टा उनको भी जो है ना वो फंसा करके जो है ना वो चिपका के रखते हैं ताकि वो भी आगे ना बढ़ सके, अल्लाह के करीब ना हो सके, क्योंकि हमें खुद नहीं अल्लाह के करीब होना ना। तो हम अपने मशायख को भी इसी तरीके से पीछे से जो टांगे खींचना होता है ना, टांगे खींचना, हम अपने मशायख की भी टांगे खींचते हैं, सीखना नहीं अपने मशायख से कि अल्लाह से कैसे जुड़ना था, टांगे खींचो इनकी भी, राइट, दुम में लग जाओ इनके, ठीक है, हाथ धो के पीछे पड़ जाओ इनके। यानी हम जो मकसद था अल्लाह के बंदों का, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का, मशायख का, उलमाए कराम का, वो मकसद नहीं पूरा करना हमने। ठीक है, तो ये कारनामे जो है ना, ये कारनामा ओरिएंटेड दीन हो, कारनामा ओरिएंटेड दुनिया हो, या कारनामा ओरिएंटेड दीन हो, ये दीन ये सही नहीं है, ये कामयाबी नहीं है। बात समझ में आई आपको, या कोई इश्काल हो तो पूछ लीजिएगा। ठीक है, इन्होंने क्या लिखा, स्ट्राइव टू गेट मेडल्स ऑफ ऑनर, नोबेल प्राइज, और गेट रिकग्नाइज बाय द वर्ल्ड, और बाय द दीनदार वर्ल्ड, गेट रिकग्नाइज बाय द दीनदार वर्ल्ड। अब तो सब दीन की हवाएं चल चुकी हैं माशाल्लाह, अब तो हर तरफ हम पिट्टू पिट्टू की तरह दीन दीन खेल रहे हैं, तो अब जो है ना वो दीन का मेडल ऑफ ऑनर, दीन का नोबेल प्राइज, और रिकग्नाइज बाय द दीनदार कम्युनिटी। राइट, खाली जो है ना वो थोड़ी सी स्पेलिंग चेंज हो गई है, हकीकत वही है हमारी, अल्लाह से नहीं जुड़ना भाई, अल्लाह के यहाँ नहीं, अपनी अल्लाह को नहीं देखना। ठीक है, बस अल्लाह रहम करे हमारे ऊपर, हमें अपने सही मुताब हो पाए। तो फरमाते हैं कि वो हकीकत हाल से खूब वाकिफ है, इसलिए उसको सबकी खबर है कि कहाँ कहाँ और किस किस हाल में है, और वो बड़ी हिकमत वाला है। जब मिलाना चाहेगा तो हजारों असबाब व तदाबीर दुरुस्त कर देगा, और ये जवाब देकर बवजह इसके कि उनसे रंज पहुंचा था उनसे दूसरी तरफ रुख कर ली, ठीक है ना, यानी इस वजह से कि उनसे जो है वो रंज पहुंचा था तो अब जो है ना वो अपनी तवज्जो का रुख जो है वो दूसरी तरफ कर लिया। वो तवल्ला अनहुम, याकूब अलैहिस्सलाम के बारे में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं वो उसने पीठ फेर दी, है ना, पीठ फेर दी किससे, अपने बेटों से। वकाल या असफा अला यूसुफ, और बवजह इसके कि उस नए गम से वो पुराना गम और ताजा हो गया था, यानी ये वजूहात बयान कर रहे हैं कि भाई इनका गम जो है वो ताजा हो गया पुराना वाला, तो यूसुफ अलैहिस्सलाम को याद करके कहने लगे कि हाय यूसुफ, अफसोस, और गम से रोते रोते उनकी आंखें सफेद बढ़ गई। वबयज्जत आयनाहु मिन अलहुज्न फहुव कज़ीम, क्योंकि ज्यादा रोने से स्याही आंखों की कम हो जाती है और आंखें बेरौनक या बिल्कुल बेनूर हो जाती हैं, ठीक है। तो कोई ये क्या कहते हैं उसको, ऑप्थल्मोलॉजिस्ट, अगर आई स्पेशलिस्ट कोई है तो उनको ज्यादा पता होगा कि भाई कैसे जो है ना इसको एक्सप्लेन किया जाता है साइंटिफिकली कि आंखें जो है वो बेनूर हो जाती हैं ज्यादा रोने से। ये मेरा मेरी फील्ड भी नहीं है। और वो गम से जी ही जी में घुटा करते थे। तजीम का तर्जुमा कैसे किया, जी ही जी में घुटा करते थे, क्योंकि शिद्दत गम के साथ जब शिद्दत जब्त होगा, जब्त यानी उसको रोक रहे हैं, गम के इजहार को रोक रहे हैं, शिद्दत जब्त जैसे कि साबरीन की शान है, तो कज़्म की कैफियत पैदा होगी। कज़्म की काफी अच्छी तस्वीर जो है वो आगे इंशाल्लाह मिलेगी, तभी हम उसमें नहीं जाते हैं। बेटे कहने लगे, बखुदा मालूम होता है कि तुम हमेशा हमेशा यूसुफ की याद में ही लगे रहोगे, यहां तक कि घुल घुल कर जाँ बलब हो जाओगे, यानी तुम्हारी जान जो है ना वो अंदर से निकल करके तुम्हारे लबों तक आ जाएगी, ठीक है, ऐसी तुम्हारी हालत हो जाएगी। यानी अपने बाप को कह रहे हैं कि तल्लाहि तफ्तऊ तज़कुरु यूसुफा हत्ता तकूना हरदन औ तकूना मिन अल-हालिकीन, अपने आप को आप हलाक कर देंगे या ये कि बिल्कुल मर ही जाओगे। तो इतने गम से फायदा किया है कि याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, काला इन्नमा अश्कु बस्ती व हुज्नी इला अल्लाह व अअलमु मिन अल्लाह मा ला ताल, कि तुमको मेरे रोने से क्या बहस है, तुम्हें तुम्हें व्हाट इज योर प्रॉब्लम, तुम्हें क्या मसला है अगर मैं रो रहा हूं, तो मैं तो अपने रंज व गम की सिर्फ अल्लाह से शिकायत करता हूँ, तुमसे तो कुछ नहीं कहता, और अल्लाह की बातों को जितना मैं जानता हूँ तुम नहीं जानते। बातों से मुराद या तो लुत्फ करम व रहमत अतम है, या मुराद इल्हाम है, या मुराद इल्हाम है, ठीक है, कि ये अल्लाह के नबी थे, तो अल्लाह के नबी के पास जो है ना वो अल्लाह ताला का सबसे ज्यादा इल्म होता है, ठीक है, और इसका अगर वो इजहार करे तो ये कोई तकब्बुर में नहीं आएगा। जैसे मिसाल के तौर पर आप ऐसे कोई जो है वो कंप्यूटर साइंटिस्ट है, कोई जो है वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, कोई जो है वो मेडिकल डॉक्टर है, तो नॉन डॉक्टर्स के सामने कोई डॉक्टर कहे कि भाई मेरे पास ज्यादा इल्म है मेडिकल साइंस का, तो नॉन डॉक्टर्स को कहे तुम ये तो तकब्बुर की बातें कर रहे हैं, ये तो मुतकब्बिर इंसान है, कह रहा है कि मेरे पास ज्यादा इल्म है, नहीं ये क्या मेरे पास भी है, खाली डॉक्टर साहब के पास ज्यादा इल्म है, तो डॉक्टर साहब जो है वो तकब्बुर वाले कहलाएंगे अगर वो कहेंगे नहीं मेरे पास भाई ज्यादा इल्म है तुम्हारे मुकाबले में, ठीक है ना। उसी तरह बोले किसी को कि भाई तुम जो है वो बिजली की चीजों के अंदर उंगली मत डालो, ठीक है ना, मुझे ज्यादा इल्म है बिजली की चीजों का, तो उसे कहेंगे अच्छा तुम तकब्बिर हो कि तुम कह रहे हो कि मुझे ज्यादा इल्म है। भाई इसी तरीके से जिसको दीन का इल्म दिया जाता है, नबी को दिया जाता है, वो किताबें पढ़ करके या दूसरों के पास बैठ करके इल्म हासिल नहीं करता, उसको जिब्राइल अलैहिस्सलाम के जरिए से अल्लाह ताला इल्म दे देते हैं, या कोई जो इल्म दीन का इल्म बाकायदा हासिल करता है, जैसे इंजीनियर इंजीनियरिंग का इल्म हासिल करता है, डॉक्टर मेडिकल साइंस का इल्म हासिल करता है, उसी तरह से कोई आलिम दीन जो है वो दीन का इल्म हासिल करता है, अब वो किसी नॉन आलिम के पास अगर जाकर के कहे कि भाई मेरे पास तुमसे ज्यादा इल्म है तुम मुझसे सीख लो, मुझे ज्यादा पता है दीन की बातों का, तो मेरी बात मान लो दीन के मामले में, अपनी अकल और अपनी जो है वो मर्जी मत चलाओ उसके अंदर, तो उसके ऊपर कहते हैं ये तो मुतकब्बिर है, ये तो पता नहीं अपने आप को क्या समझता है, राइट, दीन के इल्म के बारे में कहता है कि नहीं इसके पास ज्यादा इल्म है, ओहो मुतकब्बिर कहीं का इंसान, राइट, वहां पे जाकर के ना हमारी ये लॉजिकल कंक्लूजन वाली जो जो एबिलिटी है ना वो खत्म हो जाती है। हालांकि मेडिकल साइंस में, कंप्यूटर साइंस में, लॉ के अंदर हर जगह ये चलती है, लेकिन दीन के मामले में हम सबसे ज्यादा बड़े आलिम हैं। कौन होता है कि कहे कि नहीं वो उसके पास ज्यादा इल्म है दीन का, चाहे उसने जो है वो 8 साल पढ़े हों, चाहे उसने जो है वो 10 साल पढ़े हों, चाहे उसने कुछ भी किया हो, उसको हम नहीं मानने के लिए तैयार हैं खुद पे। ठीक है, तो ये जो हमारी सेल्फ कॉन्ट्रडिक्शन है ना, ये हमें दे डूबती है। फिर उसके बाद तो फरमाते हैं कि जी मेरे पास ज्यादा इल्म है अल्लाह ताला का ना, मैं अल्लाह का नबी हूँ, अल्लाह ताला ने मुझे दिया है, तो उसके लुत्फ व करम से मुतालिक ज्यादा इल्म है, या उसकी रहमत अतम यानी कितनी उसकी रहमत है, मुकम्मल उसकी रहमत है, तो या इल्हाम इससे मुराद है, जो उनको जो है वो वही के जरिए से अल्लाह ताला इल्म देते हैं। तो इन सब से मिलने का जो बिला बिला वास्ता, जो बिला वास्ता हो या बवास्ता है ख्वाब यूसुफ अलैहि सलाम के, जिसकी ताबीर अब तक वाकई नहीं हुई थी, यानी बिला वास्ता तो जो अल्लाह ताला की तरफ से बिला वास्ता, क्योंकि जिब्राइल अलैहि सलाम तो वास्ता होते हैं, लेकिन फरिश्ते के वास्ते को गोया के वास्ते का ना होना कहा जाता है। ठीक है ना, तो फरिश्ते एक ऐसी ऐसी ऐसे असबाब हैं कि जो के हैं भी, लेकिन उनका जो है वो तस्करा भी हर वक्त नहीं होता, होता भी है लेकिन हर वक्त फरिश्तों का तस्करा नहीं होता। तो इस वजह से ना बिला वास्ता इल्म मिलना, अगर चाहे कि जबरील अलैहि सलाम के वास्ते से मिला है, लेकिन बिला वास्ता कह देते हैं उसको, या बवास्ता ख्वाब यूसुफ अलैहि सलाम के। क्या मतलब कि यूसुफ अलैहि सलाम को ख्वाब आया था कि मुझे जो है वो सूरज चांद और जो है 11 सितारे सजदा कर रहे हैं, तो याकूब अलैहि सलाम को पता था कि भाई ये सच्चा ख्वाब था और इसकी ताबीर होनी है, तो ये ख्वाब जो है ना वो वास्ता बन गया था इस बात का कि होना है ये हमारा मामला कि यूसुफ अलैहि सलाम ने वापस आना है। सही है, तो जिसकी ताबीर अब तक वाकई नहीं हुई थी और वाकई होना उसका जरूर है। ठीक है, क्योंकि याकूब अलैहि सलाम ही नबी थे, यूसुफ अलैहि सलाम ने बाद में नबी बनना था, तो नबी का जो ख्वाब होता है वो झूठा नहीं होता, उसकी ताबीर जो है वो सच्ची होती है, जो याकूब अलैहि सलाम पता था नबी होने के वजह से। तो ऐ मेरे बेटों, इजहारे गम तो सिर्फ अल्लाह की जानिब मैं करता हूँ, मुसब्बिबुल अस्बाब वही है, लेकिन जाहिरी तदबीर तुम भी करो कि एक बार फिर सफर में जाओ। ठीक है, तो फरमाया या बनिया इज़हबू फतहस्ससू मिन यूसुफ व अखीही वला तैअसू मिन रौहिल्लाह। ठीक है, यानी बेशक मुझे भी पता है कि हाँ यूसुफ ने वापस आना है, और जो है ना वो बज़ाहिर कोई ऐसी आसानी नजर नहीं आ रही है कि यूसुफ मिल जाएगा अभी, लेकिन तदबीर करते रहो करते रहो करते रहो, तदबीर से मायूस ना हो, यानी तदबीर छोड़ करके बैठ ना जाओ। तो कहते हैं कि जाओ और यूसुफ अलैहिस्सलाम उनके भाई की तलाश करो, यानी इस फिक्र और तदबीर की जस्तजू करो जिससे यूसुफ अलैहिस्सलाम का निशान मिले और बुनियामीन को रिहाई हो, और अल्लाह ताला की रहमत से ना उम्मीद मत हो, इन्नहु ला ययअसु मिन रौहिल्लाहि इल्लल कौमुल काफिरीन, के बेशक अल्लाह की रहमत से वही लोग ना उम्मीद होते हैं जो काफिर होते हैं। जरा इसको पॉज कर दीजिएगा, कॉल देनी पड़ेगी मुझे। तो अल्लाह ताला की रहमत से ना उम्मीद मत हो, बेशक अल्लाह की रहमत से वही लोग ना उम्मीद होते हैं जो काफिर हैं, कौमुल काफिरून यानी इनकार करने वाले हैं। अल्लाह ताला की इस सिफात में से एक सिफत भी तो है ना कि अल्लाह ताला जो है वो बंदों की दुआओं को माँ को सुनते हैं, और फिर वो अल्लाह ताला उसको किसी ना किसी शक्ल में उसकी दुआ को यानी फुलफिल करते हैं, देते हैं। ठीक है, तो अब इसका इनकार करने वाला तो काफिर ही हो सकता है, काफिर का मतलब ही इनकार करने वाला होता है। बहरहाल मारिफ व मसाइल हम पढ़ना शुरू करते हैं इन आयात के अगले सफ़े के ऊपर 128। हज़रत मुफ्ती शफ़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि याकूब अलैहिस्सलाम के छोटे साहिबजादे बुनियामीन की मिस्र में गिरफ्तारी के बाद उनके भाई वतन वापस आ गए, और याकूब अलैहिस्सलाम को ये माजरा सुनाया और यकीन दिलाना चाहा कि हम इस वाकये में बिल्कुल सच्चे हैं, आप इस बात की तस्दीक मिस्र के लोगों से भी कर सकते हैं। ठीक है, पहले बात हो चुकी है कि इन लोगों को पता था कि याकूब अलैहिस्सलाम के साथ जो है ना ये पहले खेल खेल चुके हैं, और याकूब अलैहिस्सलाम वाज नॉट यानी सेटिस्फाइड, उनके दिल में था कि हाँ भाई ये लोग जो है ना मेरे साथ गड़बड़ कर रहे हैं, बल सव्वलत लकुम अनफुसुकुम, पहले भी उन्होंने कहा था याकूब अलैहिस्सलाम ने, तो इस दफा चूंकि ये सच्चे थे तो अब जो है वो दलीलें दे रहे हैं और जो है वो एविडेंसेस प्रोवाइड कर रहे हैं कि आप उनसे पूछ लें, आप उनसे पूछ लें। ठीक है, तो ऐसे ही होता है जब किसी के अपनी चोरी का पता होता है, गिल्टी कॉन्शियंस, तो फिर वो सेल्फ एक्यूजर हो जाता है। और जो काफिला हमारे साथ मिस्र से कनान आया है, आप इस बात की तस्दीक मिस्र के लोगों से भी कर सकते हैं, जो काफिला हमारे साथ मिस्र से कनान आया है उससे भी मालूम कर सकते हैं कि बिन्यामीन की चोरी पकड़ी गई, इसलिए वो गिरफ्तार हो गए। तो याकूब अलैहिस्सलाम को चूंकि यूसुफ अलैहिस्सलाम के मामले में इन साहिबजादों का झूठ साबित हो चुका था, इसलिए इस मरतबा भी यकीन नहीं आया, अगरचे फिल वाक़े इस वक्त उन्होंने कोई झूठ नहीं बोला। माना कि हकीकत क्या थी कि इस दफा ये लोग झूठ नहीं बोल रहे थे, इसलिए इस मौके पर भी वही कलिमात फरमाए जो यूसुफ अलैहिस्सलाम की गुमशुदगी के वक्त फरमाए थे। ठीक है, यानी इनका ख्याल था याकूब अलैहिस्सलाम का कि अभी भी झूठ बोल रहे हैं, हालांकि ये लोग अभी झूठ नहीं बोल रहे थे। तो चूंकि इनका ये ख्याल था, इस वजह से वही बात जो पहले कही थी दोबारा ये कह दी, बल सव्वलतकुम अन्फुसकुम अमरा फसबरुन जमील, यानी ये बात जो तुम कह रहे हो सही नहीं है, तुमने खुद बात बनाई है, मगर मैं अब भी सब्र ही करता हूँ, वही मेरे लिए बेहतर है। ठीक है, तो कुर्तुबी ने इसी से ये नतीजा निकाला है कि मुज्तहिद जो बात अपने इज्तिहाद से करता है, मुज्तहिद जो बात अपने इज्तिहाद से करता है, इसमें गलती भी हो सकती है। इज्तिहाद से करना क्या मतलब? ऊपर से वही नहीं आई थी इस मामले में याकूब अलैहिस्सलाम के पास। ठीक है, जब ऊपर से वही मौजूद नहीं है तब जो है ना मुज्तहिद अपना इज्तिहाद करता है, अगर ऊपर से वही मौजूद है तब इज्तिहाद नहीं किया जाता, या ऊपर से हुक्म मौजूद है तब इज्तिहाद नहीं किया जाता। ठीक है, इज्तिहाद तो क्या इस्तिहारा भी नहीं किया जाता। ठीक है ना, जब ऊपर से किसी चीज का हुक्म मौजूद है तो अब इस्तिहारा भी नहीं किया जाएगा। इज्तिहाद तो दूर की बात है, वो तो ज्यादा बड़ी चीज होती है, इस्तिहारा तो चलते फिरते भी अल्लाहुम्मा इग़फिरली वाख्तबली, राइट, या जो है वो बस आपने दौर के नमाज पढ़ी और जो है वो इस्तिखारे की दुआ मांगी और उसके बाद जो भी किया आपने सो गए या जा गए, कुछ भी किया आपने। इस्तिखारा तो बहुत छोटी चीज है ना, यानी बहुत छोटी सी मुराद ये है कि बहुत कैजुअली रोजाना जो है वो हर वक्त करने वाली चीज है। नहीं, अगर ऊपर से हुक्म आ गया है किसी चीज का, अब कोई इस्तिखारा नहीं किया जाएगा। जिस चीज के बारे में शरीयत का हुक्म मौजूद है कोई इस्तखारा नहीं किया जाएगा उसके ऊपर, कि मैं जो हूं वो झूठ बोलूं या मैं सच बोलूं, जिसके ऊपर इस्तखारा कर रहे हैं, पर्दा करूं या नहीं पर्दा करूं उसके ऊपर इस्तखारा कर रहे हैं, राइट। अजीब अजीब चीजों के लिए लोग इस्तखारा करते हैं और जो पूछ रहे होते हैं कि जी अल्हम्दुलिल्लाह कम से कम पूछ लेते हैं कि जी मैं उसके ऊपर इस्तखारा करूं या मैं इस्तखारा जो है वो, अच्छा जी पूछते नहीं है बल्कि बल्कि बताते हैं कि जी मैंने इस मामले में इस्तखारा किया, इस्तखारे में मुझे फलानी लाइट नजर आनी शुरू हो गई और फलाना जो है ख्वाब आना शुरू हो गया। अल्लाह के बंदे पूछ तो लिया करो यार इस्तखारा करने से पहले, अगर बिल्कुल ही इल्म नहीं है आपके पास तो कम से कम पूछ लिया करें कि इस्तखारा कर भी सकते हैं कि नहीं कर सकते, हराम काम के लिए इस्तखारा कर रहे हैं कि मैं करूँ कि नहीं करूँ। ठीक है ना, जैसे वो फौजी सिपाही ने जो है ना वो इस्तखारा कर लिया कादियानियों के कहने के ऊपर कि मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी अल्लाह का नबी है कि नहीं है, उसके ऊपर इस्तखारा कर लिया उसने, इस्तखारा किया बिल्कुल जो है ना वो अकीदे की बुनियादी बात के ऊपर इस्तखारा कर रहा है बैठ करके, काफिर हो गया फौरन उसके बाद वो। ठीक है, तो इस्तखारा जो है ना ये कोई खेल तमाशा भी नहीं है। ठीक है, इस्तखारा करना नबी अलैहिस्सलाम ने बहुत ज्यादा सिखाया, लेकिन हमारी इस वक्त इल्म का इतना बुरा हाल हो चुका है, इल्म का उम्मत के अंदर इतना बुरा हाल हो चुका है कि इस वक्त का इस्तिखारा करना किसी को काफिर बना सकता है। इस जहालत के साथ इस्तिखारा करना किसी को काफिर बना सकता है, ये हाल हुआ है हमारा इस वक्त। एंड वी हैव एब्सोल्युटली नो रिकॉग्निशन ऑफ आवर स्टेट, हमारी कंडीशन क्या है हमें बिल्कुल एहसास ही कोई नहीं है इन सब बातों का। ठीक है ना, इधर उधर से चीजें पिक कर लेते हैं और उड़ती उड़ती जो है ना वो पकड़ लेते हैं और उसके बाद वो करना शुरू कर देते हैं। ठीक है ना, इस्तखारा हो क्या जबरदस्त चीज है और कितनी अच्छी दुआ है, नबी अलैहिस्सलाम कितना ज्यादा इस्तखारा सिखाया करते थे, अब जो है वो हराम काम करने के लिए इस्तखारा कर रहे हैं, राइट, टीवी पे आकर के जो है पता नहीं इस्तखारा कर रहे हैं, तो पता नहीं क्या क्या उल्टे सीधे वो पटाखे चीजें जो है वो करना शुरू हो जाते हैं। भाई इल्म हासिल करना है, इल्म पहले जहालत दूर होगी, इल्म आएगा ना उसके बाद अमल सही होगा, उसके बाद अमल सही होगा, ठीक है भाई या नहीं? इल्म आए बगैर ही अमल सही हो जाएगा, कोई नहीं। तो अच्छा, तो मुज्तहिद, इस्तखारा की बात तो बाद में निकल आई, लेकिन इज्तिहाद जो है वो भी नहीं किया जा सकता। यहां पर ऊपर से वही नहीं आई थी याकूब अलैहिस्सलाम के पास, अल्लाह का हुक्म मौजूद नहीं था, तो इन्होंने इज्तिहाद किया। इज्तिहाद के अंदर सही गलत दोनों का होता है, चांस होता है। अगरचे के जो मुज्तहिद होता है वो उस मामले में उसका इल्म गहरा होता है, कंप्लीट इल्म होता है उसके पास, यानी जो जो एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स होते हैं उनके वो उसके पास मौजूद होते हैं, उसकी नीयत जो है वो अल्लाह की रजा और आखिरत की जजा होती है। इन दोनों चीजों के साथ जब वो इज्तिहाद करता है तो अगर उसका नतीजा सही निकले तो उसको दो सवाब मिलते हैं, अगर गलत निकले तो उसको एक सवाब मिलता है, गुना उसको नहीं होता, ठीक है? तो याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने इज्तिहाद से बात करी, गलत हो गई, ठीक है? हालांकि अल्लाह के नबी थे, उनसे ज्यादा क्वालिफाइड तो कोई हो नहीं सकता इज्तिहाद करने के लिए। तो फरमाते हैं कि तो इस कुर्तुबी रहमतुल्लाह अलैह ने इसी से नतीजा निकाला है कि मुज्तहिद जो बात अपने इज्तिहाद से कहता है उसमें गलती भी हो सकती है, यहां तक कि पैगंबर भी जो बात अपने इज्तिहाद से कहें उसमें इब्तिदाअन गलती हो जाना मुमकिन है, इब्तिदाअन, जैसे इस मामले में पेश आया कि बेटों के सच को झूठ करार दे दिया। मगर अंबिया की खसूसियत यह है कि उनको मिन जानिबिल्लाह गलती पर मुतनब्बेह करके उससे हटा दिया जाता है और अंजामे कार वो हक को पा लेते हैं, ठीक है ना? ये फर्क है एक नॉन नबी मुज्तहिद में और एक नबी मुज्तहिद में, कि नॉन नबी मुज्तहिद का दुनिया के अंदर गलती के ऊपर मुतनब्बे हो जाना कोई जरूरी नहीं है, लेकिन नबी का दुनिया के अंदर गलती पर मुतनब्बे होकर के उसको करेक्ट कर लेना ये जरूरी है। नबी की गलती जो है वो जारी नहीं रह सकती, कायम नहीं रह सकती। नॉन मुज्तहिद का, नॉन नबी मुज्तहिद जो है उनका क्या मामला, कि कोई बहुत बड़े बुजुर्ग गालबन हजरत अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह या उन्हीं के दर्जे के कोई बुजुर्ग, उनसे किसी ने पूछा कि जो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह, इमाम मालिक और इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमतुल्लाह अलैह जो मुज्तहिद मुतलक हैं चारों के चारों, बिल्कुल ऊंचे तरीन दर्जे के फुकहा में से जो मुज्तहिद हैं, तो अब इन चारों ने जो है ना वो सुन्नत के बारे में इज्तिहाद किया कि भाई ये सुन्नत है कि ये सुन्नत है, यानी हाथ बांधना, मिसाल के तौर पर हम जैसों के लिए हाथ बांधना ही सबसे ज्यादा कॉमन चीज है, कि जी नाफ के ऊपर बांधना है कि सीने के ऊपर बांधना है, कि जो है वो सीने के राइट वाली साइड के ऊपर बांधना है, जैसे इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के इश्तिहाद है कि सीने के राइट साइड की तरफ जो है ना वो दिल के, बल्कि राइट राइट भी नहीं, लेफ्ट साइड जहाँ पे दिल होता है वहां पर हाथ बांधना है, ठीक है? और इमाम शाफी का तो आपको पता ही होगा कि सारे सलफी हजरात जो है ना गैर मुकलद वो उसी तरीके से बांधते हैं, और इमाम अबू हनीफा का जो है वो नाफ के ऊपर बांधना, ठीक है? तो अब चारों का इज्तिहाद है, तो अब जो है ना वो भाई कोई एक ही तरीका सुन्नत हो सकता है ना, नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत तो एक ही हो सकती है। हाँ ये हो सकता है कि कभी कुछ और किया हो, कभी कुछ और किया हो, कभी कुछ और किया हो, लेकिन आदत मुबारक, सुन्नत की तारीफ क्या है, आदत मुबारक, तो आदत तो एक ही हो सकती है ना नबी अलैहिस्सलाम की। तो अब जो है ना ये चारों में से कोई एक ही दुरुस्त है। तो पूछने वाले ने पूछा कि क्या कयामत के दिन अल्लाह ताला गलती को खोल देंगे, इनकी गलती को उम्मत के यानी खोल देंगे कि भाई किसकी गलती थी और कौन जो है वो सही सही के ऊपर था, ठीक है ना? तो उन्होंने फरमाया कि नहीं, मेरा तो ख्याल है कि अल्लाह ताला कयामत के दिन भी जो है ना वो इनकी गलती को नहीं खोलेंगे, कि इनको जो है ना वो कोई उम्मत के सामने जो है वो शर्मिंदगी ना हो, तो कयामत में भी इनकी गलती को नहीं खोला जाएगा। ऐसे मुखलिस लोग थे और ऐसे अल्लाह की विलायत कुबरा के दर्जे के ऊपर फाइज लोग थे, और इतना उन्होंने जबरदस्त इश्तेहाद किया था, अल्लाह ताला कयामत के दिन भी उनको रुसवा नहीं करेंगे, ठीक है? तो मुज्तहिद के तो गलती का ये मामला है कि क्या पता कि कयामत के दिन भी उनकी गलती का ना पता चले, दुनिया में पता चलना तो दूर की बात, लेकिन नबी के साथ ऐसा मामला नहीं, ठीक है? तो यहाँ ये भी मुमकिन है कि हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के जहन में बात बनाने से मुराद वो बात बनाना जो मिस्र में बनाई गई कि एक खास गर्ज के मातहत जाली चोरी दिखलाकर बुनियामीन को गिरफ्तार किया गया, जिसका अंजाम आइंदा बेहतरीन सूरत में खुल जाने वाला था। इस आयत के अगले जुमले में इस तरफ इशारा भी हो सकता है, जिसमें फरमाया असल्लाहु अन यअतियनी बिहिम जमीआ, यानी करीब है कि अल्लाह ताला इन सबको मुझसे मिला देगा। ठीक है, तो ये बल सवरत लकुम अनफुसुकुम में इमाम कुर्तुबी रहमतुल्लाह अलैह ने इससे ये नतीजा अखज किया, ये भी इमाम कुर्तुबी का भी इज्तिहाद है ना, कि हजरत याकूब अलैह सलाम से इज्तिहादी गलती हो गई। यानी इमाम कुर्तुबी जो है वो इज्तिहाद कर रहे हैं, तफसीर में जो इज्तिहाद कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि याकूब अलैहि सलाम से इज्तिहादी गलती हो गई। और दूसरा पॉसिबिलिटी क्या है कि इज्तिहादी गलती नहीं हुई, बल्कि उनका मतलब जो है वो इस जुमले से ये था कि वो जो सारी की सारी तदबीर बनाई है ना तुम लोगों ने, तुम लोगों से मुराद सारे लोग, यानी इंक्लूडिंग यूसुफ अलैहि सलाम, ठीक है, क्योंकि यूसुफ अलैहि सलाम की बनाई हुई बज़ाहिर उन्हीं की बनाई हुई तरकीब थी ना ये, कि उनको तो ये सब तरकीबें जो है ना वो दरअसल अल्लाह ताला जो है वो करवा रही हैं तुम लोगों से। तो बल सब बना तरकुम अनफुसुकुम अमरा, ठीक है, हमारे नफ्सों के अंदर भी जो है वो ये बात अल्लाह ताला, यानी याकूब अलैहि सलाम से इज्तिहादी गलती भी नहीं हुई, उनका असल में मुराद कुछ और था। खुलासा यह है कि जब हजरत याकूब अलैहि सलाम ने इस मरतबा जो साहिबजादों की बात को तस्लीम नहीं किया, उसका हासिल ये था कि दर हकीकत ना कोई चोरी हुई है और ना बुनियामीन गिरफ्तार हुए हैं। जाहिर है ना चोरी हुई थी ना बुनियामीन गिरफ्तार हुए थे, वो तो अपनी मर्जी से अपने भाई के पास ठहर गए थे, बात कुछ और है। ये अपनी जगह सही था, मगर साहिबजादों ने अपनी दानिश के मुताबिक जो कुछ कहा वो भी गलत नहीं था। यानी याकूब अलैहि सलाम भी जो है वो बात सही कर रहे थे, कोई इश्तेहादी गलती नहीं कर रहे थे, और बेटे भी जो है वो अपने तौर पे सही बात ही कर रहे थे, जैसे जो उनको पता था वही बात कह रहे थे। तो सुभान अल्लाह, ये भी हो सकता है वो भी हो सकता है। अच्छा, सही है कि टाइम शेयर मुकम्मल हो गया। وتولى عنه وقال يا اسف على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم، يعني حضرت يعقوب علیہ السلام نے اس دوسرے صدمے کے بعد صاحبزادوں سے اس معاملے میں گفتگو کو چھوڑ کر اپنے رب کے سامنے فریاد شروع کی اور فرمایا کہ مجھے سخت رنج و غم ہے یوسف پر، اور اس رنج و غم میں روتے روتے ان کی آنکھیں سفید ہو گئیں، یعنی بینائی جاتی رہی یا بہت ضعیف ہو گئی، آنکھیں ان کے یعنی بہت ضعیف ہو گئیں۔ مقاتل امام تفسیر مقاتل رحمت اللہ نے ایک امام تفسیر ہے، انہوں نے فرمایا کہ یہ کیفیت یعقوب علیہ السلام کی 6 سال رہی کہ بینائی تقریباً جاتی رہی تھی، فہو تظلیم، یعنی پھر وہ خاموش ہو گئے، کسی سے اپنا دکھ نہیں کہتے تھے۔ تظلیم کظم سے بنا ہے، جس کے معنی بند ہو جانے اور بھر جانے کے ہیں، یعنی جس طرح سے ایک مشکیزہ ایک جو ہے وہ پانی کا برتن جو ہے نا وہ بھر گیا اور اس کے اوپر آپ نے ڈھکن لگا دیا، ٹھیک ہے، تو قزم کے یہ معنی ہے قزم دعاؤں سے، مراد یہ ہے کہ غم و اندوہ سے ان کا دل بھر گیا اور زبان بند ہو گئی کہ کسی سے اپنا رنج و غم بیان نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ تو ہمارے مشائخ نقشبند رحمتہ اللہ علیہ رحمہ اللہ وہ بھی یہی فرماتے ہیں کہ جو اپنی کیفیات ہے نا ان کو اپنے دل کے اندر اپنے سینے کے اندر بند کر دو، اور اوپر سے ڈھکن بند کر دو، ढक्कन लगा दो उसके ऊपर, यानी ऊपर से इजहार ना करो कि जो है ना वो जिक्र में जो है वो कैफियात आ रही हैं अल्लाह की मोहब्बत की या कोई और इस किस्म की, और जो है वो हा हू ही हा या वो शोर मचा रहे हैं और खड़े होकर के जो है वो यानी बाल नोचना शुरू हो गए या जो है वो घूमना इस किस्म की हरकतें शुरू कर दी, नहीं, जो भी कैफियात हैं उनको अपने दिल के देगची में बंद करो और ऊपर से उसके ढक्कन लगा दो, कज़म, ठीक है। तो इसीलिए कसम के मानी गुस्से को पी जाने के आते हैं, यानी गुस्से के पीने के लिए भी यही वाला लफ्ज इस्तेमाल होता है। याकूब अलैहिस्सलाम को तो गुस्सा नहीं आ रहा था, उन्होंने तो गम को पिया था, तो सिर्फ गुस्से के पीने के लिए कसम का लफ्ज इस्तेमाल नहीं होता, बल्कि गम को पी जाने के लिए भी कसम का लफ्ज इस्तेमाल होता है, मकसद पी जाना। तो फरमाते हैं कि गुस्सा दिल में भरे हुए होने के बावजूद जुबान या हाथ से कोई चीज गुस्से के मुक्तजा के मुताबिक सरजद ना हो। हदीस में है वमई यकमिलजुर, यानी जो शख्स अपने गुस्से को पी जाए और उसके तकाजे पर बावजूद कुदरत के अमल ना करे, अल्लाह ताला उसको बड़ा अजर देंगे, क्योंकि ये अल्लाह ताला की सिफत से मुशाबहत है। अल्लाह ताला हलीम है। हलीम भी इसी को कहते हैं कि जो कि किसी के ऊपर नाराज हो, गुस्सा उसको हो, तो वो कर सकता है, इजहार भी कर सकता है, पिटाई भी कर सकता है, गुस्सा और जो है वो डांट डपट भी कर सकता है, हाथ भी लगा सकता है, लेकिन वो हलीम, हिल्म का मुजाहरा करे, ठीक है, वो पी जाए, वो उसको दबा जाए, और सिर्फ जो है ना जब जरूरत पेश आए, कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए कि जब अब जो है वो लाजमी हो गया है गुस्से का इजहार करना, तो उस वक्त खाली इजहार करें। कुदरतन आज सुबह खवातीन की क्लास के अंदर इसके ऊपर बड़ी तफसील के साथ बात हुई। यानी इसका मतलब ये नहीं है, हलीम का मतलब ये नहीं है कि कुछ भी ना हो उसको, ठीक है, कोई कुछ भी करता रहे ये चुप शाह बने रहे हैं। और बेटे साहब भी अभी बिल्कुल अभी एंटर हुए हैं, उनको हजरत जी चुप शाह कहते हैं, हालांकि वो है नहीं चुप शाह, हजरत के सामने जाकर के चुप 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 हो जाते हैं, ठीक है। तो ऐसा चुप शाह का मतलब नहीं है कि हलीम, ठीक है, कि कोई कुछ करता रहे जी इन्होंने कुछ करना ही नहीं है, सजा ही नहीं देनी, गुस्सा ही नहीं दिखाना, मारपीट करनी नहीं है, नहीं, अल्लाह ताला सजा भी देते हैं, अल्लाह ताला जो है वो दूसरे तरीकों से भी जो है वो यानी नाराजगी अपनी दिखाते हैं बंदे को, ठीक है, लेकिन बहुत बर्दाश्त भी करते हैं, बहुत जो है वो हिल्म वाले भी हैं, ठीक है। तो इंसान के अंदर जब ये सिफत होती है तो वो हिल्म भी कहलाता है, और वो गुस्से को पी जाने के लिए कज़म यक्ज़म ये सब भी इसके लिए इस्तेमाल होता है। एक हदीस में है कि हश्र के दिन अल्लाह ताला ऐसे लोगों को मजमा आम के सामने लाकर जन्नत की नेमतों में इख्तियार देंगे कि जो चाहे ले ले। इमाम इब्न जरीर रहमतुल्लाह अलैह ने इस जगह एक हदीस नकल की है कि मुसीबत के वक्त इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ने की तलकीन इस उम्मत की खसूसियात में से है, और ये कलमा इंसान को रंजो गम की तकलीफ से निजात देने में बड़ा मुअसर है। खसूसियत उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इससे मालूम होती है कि इस शदीद गम व सदमे के वक्त हजरत याकूब अलैहि सलाम ने इस कलमे की बजाय यानी इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कहने की बजाय या असफा अला यूसुफ फरमाया। बयकीन शेब अल ईमान में भी यह हदीस इब्न अब्बास की रवायत से नकल की है। यानी पिछले अंबिया को अल्लाह ताला ने ये कलमा अता नहीं किया था, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, वरना याकूब अलैहि सलाम ये पढ़ रहे होते इस मौके पर, शदीद गम की हालत में ये पढ़ रहे होते, ठीक है ना। तो अल्लाह ताला का कितना एहसान है कि अल्लाह ताला ने हमें ये वाला कलमा अता फरमाया नबी अलैहिस्सलाम की रहमत के सबब से और आप की निस्बत से। बहरहाल यहाँ पर हम आज की क्लास मुकम्मल खत्म करते हैं, और बाकी इंशाल्लाह आज की क्लास में पढ़ेंगे। कोई अगर किसी के जहन में कोई सवाल कमेंट वगैरह हो अभी वो पूछ सकते हैं। ठीक है, फिर कोई सवाल अगर नहीं है तो क्लास का इख्तिताम करते हैं। वा आखिर दुआ अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम।